मुख्य समाचारों में 4 जनवरी से बूस्टर शॉट्स के लिए अब अंतराल घटकर 4 महीने का। कोविड-19 का दैनिक रिकॉर्ड देश भर में जारी है। ओमिक्रॉन ने जोर पकड़ा है और भारत में खुफिया एजेंसियों को चुनाव से पहले पंजाब में हमलों की आशंका। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ऑस्ट्रेलियन वयस्क कोविड-19 वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक के 4 महीने बाद 4 जनवरी से अपना कोविड-19 बूस्टर शॉट प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस बदलाव की पुष्टि फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पॉल केली ने टीकाकरण पर ऑस्ट्रेलियन तकनीकी सलाहकार समूह की सलाह के बाद की। श्री हंट का कहना है कि परिवर्तनों का अर्थ है कि उस समय बूस्टर के लिए योग्य लोगों की संख्या 3.2 मिलियन से बढ़कर 7.5 मिलियन हो जाएगी।
On the basis of advice of the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, it's no surprise we will be bringing forward the eligibility for the booster dose to 4 months as of the 4th of January. The planning behind that is that will open up a new cohort currently. That means that we will go from about 3.2 million people who are eligible to approximately 7.5 million who will be eligible as of the 4th of January.
जनवरी के अंत से अंतराल फिर से बदल जाएगा, जिसका अर्थ है वयस्क अपनी दूसरी खुराक के 3 महीने बाद पात्र होंगे। अगले सप्ताह यानी दिसंबर 28 से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस प्रतिबंध हटाने की योजना अब 2022 तक विलंबित हो गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन संस्करण के कारण राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि हो रही है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड 688 नए कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट है, जबकि गुरुवार को ये 484 थे। जीन अनुक्रमण से पता चलता है कि राज्य में 70% मामले अब अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन संस्करण के हैं। श्री मार्शल का कहना है कि जोखिम को सीमित करने के लिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लोग घर से काम करें और अपने क्रिसमस समारोह को कोविड सुरक्षित तरीके से ही आयोजित करें।
We've updated our forecast here in South Australia, like I think every jurisdiction around the country has done. And if we don't take action, there is going to be a significant problem for our country. It will overwhelm our health system, not because it is more severe, but just because of the sheer volume of people who are likely to become infected with this variant of concern.
इस बीच दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने रैपिड एंटीजन टेस्ट परीक्षणों के उपयोग पर प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे फार्मेसीज और सुपरमार्केट में उनकी बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। न्यू साउथ वेल्स के अस्पतालों में अब 382 लोगों का इलाज कोविड-19 के लिए किया जा रहा है, जबकि कल 347 की रिपोर्ट थी। इनमें से 53 मरीज गहन देखभाल में हैं। राज्य ने पिछले 24 घंटे की बीती रात 8 बजे तक 5,612 मामले दर्ज किए हैं। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट ने इंडोर मास्क जनादेश को बहाल कर दिया है और कम से कम 1,500 स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब वायरस के संपर्क में आने के बाद आइसोलेशन में हैं। क्वींसलैंड के स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से तथाकथित गेट कोविड रेडी किट्स तैयार करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में 589 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नवीनतम रिपोर्टिंग अवधि में 30,000 से अधिक परीक्षण किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ये विद्यार्थ का कहना है कि घर पर थर्मामीटर, नियमित दवाएं और अगर एक या दोनों माता पिता अस्पताल में हैं तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इन सब की योजना आवश्यक है क्योंकि मामले बढ़ते रहेंगे।
We get ready for storms. Now you need to get ready for COVID. And we have toolkits, materials that are prepared for people to tell them what happens when you get a text saying you're positive. And the text is being updated and will change today to not just talk about being isolated, but link you to the materials. So you know what happens next when I get a text saying I'm positive.
कोविड-19 के कारण कर्मचारियों की कमी हो जाने से पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मेलबर्न हवाई अड्डे से अब तक लगभग एक दर्जन उड़ानें रद्द की गई हैं और अधिकतर सिडनी से जेटस्टार और क्वांटस की यात्राएं बाधित हुई हैं। वैसे कई उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार उड़ान भी भर रही हैं। ये व्यवधान प्रतिबंधों के कारण हुआ है, जिसका अर्थ है कि कुछ एयरलाइन कर्मचारियों को परीक्षण कराना है और आइसोलेट होना है। एयरलाइंस वैकल्पिक उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को लाने के लिए काम कर रही है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने सिडनी के एक व्यक्ति को आतंकवाद के अपराधों में उसकी संदिग्ध लिप्ति के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज्य की संयुक्त आतंकवाद विरोधी टीम 34 वर्षीय की ऑनलाइन गतिविधियों और कई प्लेटफॉर्म्स पर आयत सामग्री और चरमपंथी विचारों को साझा करने की जाँच कर रही थी। उसे आज सवेरे गिरफ्तार किया गया और उसे सदरलैंड पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां उसे आरोपित किया जाएगा। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट माइकल शेही का कहना है कि उस व्यक्ति ने पुलिस और आम जनता को धमकी दी, लेकिन वो समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है।
There is a number of things that are particularly concerning with respect to this individual. He is posting significant amount of material in respect of bombings, beheadings, manufacture of explosives and other material. It is likely he was, and we will suggest that he was preparing to commit a terrorist act, and that be an act of violence against law enforcement.
वरिष्ठ ऑस्ट्रेलियन लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर फेडरल सरकार को सूचित करने के लिए एक नया सलाहकार निकाय बनाया गया है। काउंसिल ऑफ एल्डर्स की स्थापना हो ये रॉयल कमीशन की ओर से वृद्ध देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा में एक सिफारिश थी। वृद्ध देखभाल विशेषज्ञ यान येट्स परिषद के अध्यक्ष के रूप में अन्य सदस्यों के साथ काम करेंगे। सदस्यों को 2 साल की शर्तों के लिए नियुक्त किया जाता है और वो सरकार को सलाह देंगे। वरिष्ठ ऑस्ट्रेलियन उनके परिवारों और समुदायों से प्रतिक्रिया समन्वित करेंगे और उम्र बढ़ने और वृद्ध देखभाल मामलों के बारे में सामुदायिक जागरूकता बनाने में मदद करेंगे। भारत में खुफिया एजेंसियों ने चुनाव से पहले पंजाब में हमलों की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की है। इसको लेकर राज्य की पुलिस से संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तेज करने और सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखने को कहा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी स्टेट पुलिस और स्थानीय खुफिया एजेंसी के साथ इस संबंध को कोऑर्डिनेट कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले सीमा के क्षेत्र में ड्रोन गतिविधियों को देखा गया, जहां भारतीय क्षेत्र में विस्फोटक और हथियार गिराए गए थे। जैसा कि विदित है, हाल ही में लुधियाना में एक बम विस्फोट की वारदात सामने आई है। और भारत में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुवार को राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक की, जिसमें नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता और तमाम उपाय करने पर जोर दिया। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि राज्य जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती को सुनिश्चित करें। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 72 सेंट और भारत के 54.33 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तारीफ की और कहा बल्लेबाजों को अपना काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टीम को सिर्फ विराट कोहली के भरोसे नहीं रहना चाहिए और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी का टीम के लिए पूरा उपयोग करना चाहिए। पहला मैच सेंचुरियन में 26 दिसंबर से शुरू होगा। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बहुत अधिक गर्मी रहेगी। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री। और डार्विन में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।